ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Srishtam Manamapi Shachiputra Matra Swarupam Rupam tasya gajamurupurim maturim goshtapatim Radha kundam girivaramaho radhika madhavasham Prapto yasya pratita kripaya Shri Gurum tam natosmi Vandeham Shri Guru Shri Atav Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abhi mujhe Vaishnavi Diksha ka आर्थ और महत्व के बारे में कुछ कहना है। आज बहुत शुभ दिन है दीक्षा अनुष्ठान के लिए। जो भी दिन किसी व्यक्ति की वैष्णवी दीक्षा प्राप्ति होती है वो ही दिन शुभ है, क्योंकि पूरा भौतिक जगत अशुभ है, पूरी अवस्था अशुभ है। शुभ अशुभ ये दोनों शब्द हम कहते हैं, परंतु वास्तव में पूरा भौतिक जगत अशुभ है, क्योंकि भौतिक जगत है भगवान कृष्ण की विस्मृति करने का स्थान है। और वास्तविक शुभ है भगवान कृष्ण का स्मरण करना, और भगवान कृष्ण का विस्मरण करना पूरा अशुभ होते हैं। तो जो किसी भी दिन दीक्षा अनुष्ठान होते है वो दीक्षा प्राप्त करने वाला का परम शुभ होते है। परंतु आज विशेष शुभ है, क्योंकि आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी। और नित्यानंद कौन है इसके बारे में मैं बाद में, यदि इनकी कृपा हो, इसके बारे में और कुछ कहूंगा। संक्षेप में कहता हूं कि बलराम अवतार चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण अवतार है, तो बलराम कृष्ण के भाई साथ में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा कृपामय अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम्हारे बिना के दयालु जगत संसार। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषय नमः। चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, बहुत ही उदार है, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदान करते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो सभी अवतार में सबसे दयालु है, परंतु इनसे नित्यानंद प्रभु और भी दयालु है, और उसका प्रमाण हम थोड़ी देर के बाद मिलेंगे नाटिका में, जागाय माधाय की नाटिका में। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे जगत के गुरु है, और नित्यानंद प्रभु वो गुरु है जो हमको वही गुरु चैतन्य महाप्रभु देते हैं। नित्यानंद प्रभु है आदि गुरु, क्योंकि वे हमको चैतन्य महाप्रभु देते हैं, बलराम हमको कृष्ण देते हैं, वे आदि गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु सबके गुरु है और सब नित्यानंद प्रभु के शिष्य है। तो इसलिए आज विशेषकर अति शुभ होते हैं, क्योंकि ये दिवस बहुत ही योग्य है दीक्षा अनुष्ठान आयोजन करने के लिए। तो दीक्षा का अर्थ और महत्व क्या है? यही है कि हम सब भौतिक संसार में है। भौतिक संसार में हम क्या करते हैं? हम आहा निद्रा भाई मैथुन करते हैं 84 लाख जीव जाति में। कृष्ण विस्मरण करके हम भ्रमण करते हैं भौतिक संसार में। कभी कभी हम इंद्र जैसे बड़ी स्थिति मिलते हैं, और कभी कभी हम इंद्रगोप छोटा कीट जैसे स्थिति मिलती है। तो पूरी जगत में हम केवल दुख मिलते हैं, क्योंकि कृष्ण जिनका नाम है नित्यानंद, कृष्ण भगवान पूर्णानंदमय है, भगवान कृष्ण नित्यानंद है, वे आनंद का आस्पद, वो क्या आनंद है कृष्ण का आनंद, वो प्रेमानंद है। ये भौतिक संसार में हम सब यहाँ आते हैं कृष्ण को भूलने के लिए, इसलिए हम वो एक बड़ा आग जैसे स्फूलिंग है, वो एक देश स्थित याग्नेय ज्योत्सना विस्तारिणी यथा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण एक महान आग जैसे वो उपमा है, और हम जो जीव है ममाय वांसो जीवलोके जीव भूत सनातना, हम सब कृष्ण के अंश, हम तुच्छ स्फुलिंग जैसे है। तो यदि वो स्फुलिंग तो बड़ा आग से च्युत होते दूर जाते, तो वो आग जैसे तेज प्रकाश ताप देते हैं। तो इसी प्रकार वो स्फुलिंग जब तक आग के साथ रहते हैं, तब तक वो थोड़ा सा तेज ताप प्रकाश देते हैं, लेकिन वो स्फुलिंग यदि वो आग का बहा जाते हैं तो उसमें और भी तेज प्रकाश और ताप नहीं रहते, या बहुत कम। तो इसी प्रकार हम जो जीव है, हम कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय है, भगवान कृष्ण पूर्ण सच्चिदानंदमय है और हम अंश के रूप में सच्चिदानंदमय है क्योंकि हम जीव है कृष्ण के अंश। परंतु जब हम कृष्ण से दूर जाते हैं तो वो आनंद, वो स्वाभाविक आनंद जो जीव का है, वो आनंद जो कृष्ण का आनंद का अंश है, वो आनंद हम नहीं मिलते और बहुत थोड़ा सा आनंद मिलते हैं और बहुत ही दुख मिलते हैं। ये भौतिक संसार का सबसे बड़ा लक्षण है कि दुखमय है, अनित्यम असुखम लोकम। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, सब कुछ यहाँ पर अशाश्वत है और सब कुछ दुखमय है। तो इसी प्रकार हम भौतिक संसार में रहते हैं और 84 लाख प्रकार की जीव जाति में हम भ्रमण करते हैं। कभी कभी जानवर का शरीर मिलते हैं, कभी कभी कीट का शरीर, कभी कभी देव का शरीर, कभी कभी दैत्य का शरीर। तो इस प्रकार 84 लाख प्रकार के जीव जाति में भ्रमण करने के बहुत दीर्घ समय के पश्चात हम अवसर मिलते हैं मानव जन्म प्राप्त करना। तो मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल मनुष्य जीवन में वो अवसर होते हैं जिससे हम मानवी बुद्धि, विवेक, विचार विमर्श लगा के समझ सकते हैं कि हम भौतिक संसार में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं, हम बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं और इस प्रकार हम पूरा भयानक दुग्मय स्थिति में है। तो यही समस्या का समाधान प्राप्त करना संभव है मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम क्या मिलेंगे उससे? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोजना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई पूरी तरह समझते कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म और कृष्ण के कार्यकलापों सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है, अर्थात कृष्ण भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी कभी कभी भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, राम के रूप में, वराह के रूप में, कल वराह द्वादशी था। तो जो व्यक्ति पूरी तरह समझते है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान ही है। एक छोटे से शब्द में कृष्ण के बारे में सब कुछ कहना है, भगवान। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है और हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ? तो गुरु से ही सीखना है जिससे हम कृष्ण के बारे में सब कुछ समझने से हम क्या लाभ मिलते हैं। तो यही मानव श्रेय चरण का समय हम कृष्ण के पास जाएंगे, हम वापस भौतिक संसार 84 लाख जीव जाति में वापस नहीं आएंगे। तो यही अवसर है मनुष्य जन्म में। इसलिए भगवान कृष्णा हमको उपदेश देते, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थदम् अनित्यम् अपिह धीरा तूर्णम् यथेतनपतेतनु मृत्यु यावा निःश्रयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी हम मानव शरीर प्राप्त किया है, अभी हम मानव शरीर धारण करते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। बहुत जन्मों के पश्चात मानव शरीर मिलते हैं, तो मानव जीवन ज्यादा समय नहीं रहेगा। किसी का जीवन आयु बहुत दीर्घ नहीं होते, विशेषकर कल युग में। तो फिर भी जीवन आयु छोटा होते हुए भी मानव जन्म विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जीवन में हम जीव का वास्तविक अर्थ, जो परमार्थ है, हम मिल सकते हैं। अर्थात मानव जीवन में हम मानवी बुद्धि लगा के हम समझ सकते हैं कि मैं सनातन जीव हूँ, मैं भगवान कृष्ण का नित्य सेवक हूँ और मेरी एक ही धर्म दायित्व है वो श्री कृष्ण के चरण में प्रेम युक्त शरणागत होना चाहिए, अर्थात हमें भक्ति योग करना चाहिए, जिससे हम सब मायिक मोह भ्रम भूल के पूरा तन्मय होंगे कृष्ण की सेवा में, और इस प्रकार हम अनादिकाल का सांसारिक बंधन से मुक्त होंगे और कृष्ण के पास जाएंगे, और कृष्ण के पास जाने के पश्चात हम और भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे। तो यही अवसर है मानव जीवन में। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तूर्णम, अभी करो, जल्दी करो, क्योंकि मृत्यु हमारे समक्ष है, मृत्यु सामने है। तो इसलिए यही जीवन के मृत्यु के पहले, कितने जन्म इसके पहले हम लिया है, असंख्य। तो इसी जन्म का मृत्यु के पहले हमें वैसे क्रिया करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जो परम श्रेय है, परम शुभ है। और यदि हम विचार करते कि नहीं, क्यों हम परमार्थ के बारे में सोचेंगे, तो भगवान कृष्ण हम विषय इंद्रिय सुख के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके पहले बहुत बहुत जन्मों में हम इंद्रिय सुख मिला है, परंतु वो इंद्रिय सुख से हम सुखी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो केवल नाम में सुख है। और यदि यही दुर्लभ मानव जन्म में हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो भावी बहुत बहुत जन्मों में हम इंद्रिय सुख मिल सकते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख से हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए मानव जन्म में हम कृष्ण की भक्ति करने चाहिए। तो कैसे हम भक्ति करेंगे, कैसे हम जानकारी में लेंगे कि कृष्ण भक्ति करने चाहिए, कैसे कैसे कितना मानव है दुनिया में आज, कितने है, कितने करोड़, कोई जानते 800 करोड़ के अधिक, कितने है कोई जानते, कोई नहीं, ऐसे है नहीं, जनसंख्या दुनिया का 7.3 बिलियन, वो कितने करोड़ है, 730 करोड़। और ज्यादातर लोग तो कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो कुछ है विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा से आजकल पूरी दुनिया में लोग है जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, हजार हजार लोग, लाख लाख शायद, परंतु अधिकांश व्यक्ति तो कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं जानते कुछ। भारत में सब कुछ कम से कम कृष्ण का नाम सुने हैं, लेकिन कि मानव जन्म पूरा उत्साह करना चाहिए कृष्ण भक्ति में, ज्यादातर हिंदू भी नहीं जानते, और यदि जानते तो जानबूझ करके गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमित कनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। असंख्य जीव है ब्रह्मांड में जिनमें कोई एक भाग्यवान होंगे जिससे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते। वो भक्ति लता बीज क्या है, वो ज्ञान कि मुझे जीवन पूरा उत्साह करना चाहिए गंभीरत्व से कृष्ण की भक्ति करने के लिए, जिससे कृष्ण की पूरी कृपा मिलते हैं। तो गुरुजन प्राथमिक शिक्षा करते हैं, प्रचार करते हैं, सबको कहते हैं कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे। गुरुजन सबको बताते हैं कृष्ण नाम करो और सब कुछ फलतू है। जो भाग्यवान है यही संदेश सुन के ग्रहण करते हैं उनके हृदय में, और इसलिए वे गुरु और भक्तों से पूछते हैं तो मुझे क्या करना है जिससे मैं भी कृष्ण भक्ति कर सकूंगे और इस प्रकार मैं भी कृष्ण के पास जा सकूंगा। तो यही विषय के बारे में भक्ति का महत्व, कैसे भक्ति करने हैं, तो यही विषय के बारे में चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय के आदि गुरु रूप गोस्वामी इनकी भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ लिखते हैं, बताया कि अथ गुरुवाश्रय कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम्। Vishrambhena Guru Seva Kaise Bhakti Karne Hai Rup Goswami Hamko Sandesh Dete Hai Chaurasi Chaurasi No Chosat Mukhya Bhakti Ang Hai Or Bhakti Rasamrit Sindhu Mein Rup Goswami Wo Sab Likhte Hai Or Sab Ka Varnan Karte Hai Shastra Gyan Shastra Ka Praman Ke Anusa To Bhakti Jeevan Mein Jisme Chosat Bhakti Ang Hai Pratham Chare Guru Ke Bare Mein Yadi Ham Gambhiratva Se Pura Jeevan Utsag Karke Krishna Bhakti Karne Chahiye To Hame Yehi Karne Chahiye Rup Goswami Kehte Hai To Sarva Pratham Guru Ashray Karne Chahiye Ashraya Loya Bhaje Tare Krishna Nahitaje Arshab Mare Akaram Jo Ashray Leke Krishna ka bhajan karte hain to wo bhakt Krishna ko tyag nahi karte yadi koi Krishna bhakti karne chahte hain kisi guru ke charan mein ashray nahi leke to Krishna bhagwan wo dhongi bhakt ki mithya bhakti ग्रहण नहीं करते हैं और जो आश्रय लेके कृष्ण का भजन नहीं करते हैं वो व्यक्ति का जीवन तो पूरा शून्य है तो सर्वप्रथम हमें गुरु का आश्रय करना चाहिए गुरु आश्रय देते हैं और शिष्य आश्रय लेते हैं तो वास्तविक आश्रय है कृष्ण और कृष्ण भगवान बद्ध जीवों पतित जीवों का उद्धार करने के लिए यही पद्धति देते हैं कि कृष्ण का आश्रय लेना है भौतिक संसार में कृष्ण के प्रतिनिधि के द्वारा गुरु तो भगवान नहीं है गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है और गुरु जो कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में योग्य शिष्यों को आश्रय प्रदान करते हैं तो आश्रय कैसे हम लेते हैं हम विनम्र भाव से क्या कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शिनः तो आश्रय लेना है कैसे पहले विनम्रता होना चाहिए भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपात शब्द का अर्थ है दंडवत प्रणाम करना अर्थात हार्दिक नम्रता दिखाना तो नम्रता के बिना हम शिष्य नहीं हो सकते नम्रता प्रथम शर्त है शिष्य होने के लिए तो और क्या करना है प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना हमें उत्साही होने चाहिए गुरु की शिक्षा समझने के लिए एक व्यक्ति शिष्य होते हैं किस लिए जिससे ज्ञान मिलेंगे शिक्षा मिलेंगे गुरु से तो इसलिए वो तत्व ज्ञान जो गुरु देते हैं तो शिष्य बहुत उत्साही होने चाहिए वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए और जब तक वो ज्ञान तो पूरी तरह नहीं समझते तब तक भिन्न भिन्न प्रश्न पूछना जिससे वो पूरा विषय समझ सकते। जैसे गीता में अर्जुन बार बार कृष्ण से पूछे कि कृष्ण जो आप कहते हैं मुझे नहीं आता है, उसका अर्थ क्या है। कथा में तान विजानेयन त्वमादौ प्रोक्तवान इति। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि बहुत पहले मैं सूर्यदेव को यही ज्ञान प्रदान किया था। तो अर्जुन बताए तो कैसे समझ सकता हूँ कि बहुत पहले आप सूर्यदेव को ज्ञान प्रदान किया। तो इस प्रकार अर्जुन योग्य प्रश्न योग्य गुरु कृष्णा कृष्णम वंदे जगत गुरु पूछे, और इस प्रकार जो योग्य शिष्य है तो योग्य गुरु से योग्य प्रश्न देते हैं और गुरु तो यथार्थ उत्तर देते हैं शास्त्र प्रमाण के अनुसार। तो आश्रय लेना है गुरु का। और जैसे आज दीक्षा अनुष्ठान आयोजित है तो गुरु से दीक्षा लेना है। दीक्षा क्या है, औपचारिक रूप में स्वीकार करना कि मैं दास हूं, कि मैं प्रभु नहीं हूं। कितने जन्म में हम प्रयास किया प्रभु होना, ईश्वर होना। तो औपचारिक रूप में दीक्षा ग्रहण करने से हम स्वीकार करते हैं कि मैं दास हूं, दास अनुदास अनुदास अनुदास। मैं मेरा गुरु का दास हूँ, मेरा गुरु इनके गुरु के दास है, मेरे गुरु के गुरु इनके गुरु के दास है। और इस प्रकार हम परंपरा में से कृष्ण के दास अनुदास 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 होते हैं। तो केवल गुरु के दास नहीं होना चाहिए, गुरु और कृष्ण। भक्ति का केंद्र बिंदु है कृष्ण, और गुरु भक्ति भी होने चाहिए क्योंकि गुरु हमको मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम कृष्ण के चरण तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हमें दीक्षा लेना है। और दीक्षा तो सब कुछ नहीं है, दीक्षा के पहले और पश्चात हमें गुरु से शिक्षा लेने चाहिए, शिक्षा लेने चाहिए। क्योंकि जैसे ये अनुष्ठान एक स्कूल में आयोजित है तो स्कूल का अर्थ है, स्कूल का उद्देश्य है ज्ञान का आदान प्रदान। तो इसी प्रकार गुरु से हमें कृष्ण भक्ति और कृष्ण के बारे में सीखना है। सब गुह्या अर्थ जो है शास्त्र में सब कुछ गुरु से ही सीखना है। और विश्रम्भेन गुरु सेवा, स्नेह से हमें गुरु की सेवा करना। हम ज्ञान के लिए गुरु के पास जाते हैं, वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है, भक्ति के बारे में ज्ञान। सुखना सुखा ज्ञान नहीं है, ये रसमय ज्ञान है। कृष्ण भक्ति के बारे में वो ज्ञान जो है वो रसमय है क्योंकि भक्ति रसमय है। तो इसलिए गुरु की सेवा करने है औपचारिक रूप से नहीं तो पूरा स्नेह से। और इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रशिक्षण मिलते हैं जिससे हम योग्य होंगे भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की लीला में अंश ग्रहण करना। तो यही विषय विशाल ही है। तो 30 मिनट में कृष्ण भक्ति गुरु शिष्य तो यही सब विषय के बारे में पूरी तरह कहना संभव नहीं है। तो अनंत काल में भी कृष्ण के बारे में पूरी तरह कहना संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण का नाम है अनंत और इनके नाम गुण रूप लीला कृपा सब कुछ अनंत है। तो यही छोटा सा प्रवचन में मैं प्रयास किया था, मैंने प्रयास किया था दीक्षा के बारे में कुछ धारणा देना, कुछ अपूर्ण दर्शन देना और आप सब और भी शिक्षा लेंगे। इसके बाद दीक्षा प्रवेश ही है, वास्तविक भक्ति जीवन में प्रवेश है। जैसे वो स्कूल में एडमिट होते तो जो आज दीक्षा लेंगे वे गुरुकुल में छात्र के रूप में प्रवेश करते। शिष्यों गुरु की कृपा से वो भक्ति का स्कूल में प्रवेश करते हैं। यही दीक्षा का अर्थ है और महत्व है संक्षेप में। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बो। जो बोल दिया था वो परफॉर्मेंस नहीं था, अभिनय नहीं था, इसलिए हाथ ताली देने का आवश्यकता नहीं है।